नमस्कार, संयुक्त राष्ट्र समाचार के साथ मैं सचिन गौर। 29 अप्रैल 2022 के साप्ताहिक कार्यक्रम की सुर्खियां। यूक्रेन में संकट के बीच यूएन महासचिव ने रूस और यूक्रेन का दौरा किया। 21वीं सदी में युद्ध को बेतुका एक बुराई बताया। मानवीय राहत जरूरतों को पूरा करने और शांति स्थापना के प्रयासों पर जोर। मानव गतिविधियों और बर्ताव की वजह से वैश्विक आपदाओं की संख्या में बढ़ोतरी। कोविड 19 महामारी के व्यवधान के बावजूद मलेरिया मुक्त विश्व की दिशा में प्रगति। और गणित में लड़कों के बराबर पहुंच रही हैं लड़कियां, मगर बाधाएं बरकरार। आपको याद दिलाते चलें कि खबरों को विस्तार से पढ़ने और खास रिपोर्टों और इंटरव्यूज को सुनने और देखने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर भी आ सकते हैं। पता है news.un.org/hi। अब समाचार विस्तार से। यूक्रेन की अपनी यात्रा के दौरान संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेश ने कहा है कि देश इस समय असहनीय पीड़ा से गुजर रहा है। इसके मद्देनजर उनका पूरा ध्यान जिंदगियों की रक्षा करने, मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने और शांति के लिए रास्ते की तलाश करना है। यूएन प्रमुख ने यूक्रेन पर रूसी सैन्य बलों के आक्रमण से प्रभावित बोरोडियांका, बूचा और इरपिन का दौरा किया। ये वो इलाके हैं जहां युद्ध अपराधों को अंजाम दिए जाने का संदेह है। हमलों में ध्वस्त हो चुकी इमारतों को देखने के बाद यूएन प्रमुख ने कहा,
The war is an absurdity in the 21st century. The war is evil.
महासचिव गुटेरेश कह रहे थे कि 21वीं सदी में युद्ध बेतुका है, युद्ध एक बुराई है। यूएन प्रमुख ने रूस से अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय द्वारा की जा रही जांच में सहयोग देने का आग्रह किया है। गुरुवार को यूक्रेन की राजधानी कीव में यूएन प्रमुख ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के साथ एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए युद्ध का अंत किए जाने की पुकार दोहराई। इससे पहले मंगलवार को यूएन प्रमुख रूस की यात्रा पर थे, जहां उन्होंने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और विदेश मंत्री सर्गेई लेवरोफ से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि इस युद्ध का अंत जितनी जल्दी किया जाए उतना ही बेहतर होगा, यूक्रेन के लोगों के लिए, रूसी महासंघ के लोगों के लिए और उनके लिए जो वहां से दूर हैं। महासचिव ने रूस में शांति दूत के तौर पर अपनी भूमिका को रेखांकित करते हुए ध्यान दिलाया कि संयुक्त राष्ट्र ने बार बार आम लोगों की रक्षा के लिए युद्ध विराम का आग्रह किया है, साथ ही एक राजनैतिक समाधान की दिशा में संवाद की अपील की है। यूक्रेन में हिंसा के बीच बंदरगाह शहर मारियोपोल में फंसे आम नागरिकों को सुरक्षित बाहर निकाले जाने के काम में यूएन और रेडक्रॉस को शामिल करने के लिए रूस ने सैद्धांतिक रूप से अपनी सहमति व्यक्त की है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मंगलवार को निर्णय लिया है कि सुरक्षा परिषद में अगर किसी मुद्दे या प्रस्ताव पर किसी स्थायी सदस्य देश द्वारा वीटो अधिकार का इस्तेमाल किया जाता है तो इसके 10 दिनों के भीतर यूएन महासभा की बैठक स्वतः हो सकेगी। ज्यादा जानकारी के साथ यूएन न्यूज हिंदी के प्रमुख महबूब खान।
सुरक्षा परिषद में चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका के पास वीटो का अधिकार है, जिसका मतलब है कि इनमें से कोई भी देश किसी प्रस्ताव पर वीटो कर सकता है। इसका प्रावधान यूएन चार्टर में है और इन पांचों देशों को संयुक्त राष्ट्र की स्थापना में उनकी भूमिका को देखते हुए वीटो का अधिकार दिया गया था। महासभा में मंगलवार को सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के बाद अब सुरक्षा परिषद में वीटो का प्रयोग होने पर महासभा की स्वतः बैठक हो सकेगी, जिसमें संयुक्त राष्ट्र के सदस्य वीटो की गहन समीक्षा करके उस पर टिप्पणी भी कर सकते हैं। ये प्रस्ताव विशेष रूप से इस संदर्भ में पारित हुआ है जब रूस ने यूक्रेन पर हमला करने के एक दिन बाद सुरक्षा परिषद में आए एक प्रस्ताव प्रारूप पर वीटो का अधिकार प्रयोग किया था। उस प्रस्ताव के प्रारूप में रूस को यूक्रेन से बिना शर्त वापस हटने का आह्वान किया गया था। यूएन महासभा में मंगलवार को पारित प्रस्ताव को 83 सदस्य देशों ने अपना आरंभिक समर्थन देते हुए महासभा में पेश किया था और इसका प्रारूप लीश्टेनस्टीन देश ने प्रस्तुत किया था। पारित होने के बाद ये प्रस्ताव तत्काल प्रभाव में आ गया है। लीश्टेनस्टीन देश के राजदूत क्रिश्चियन वेनावेसेर ने कहा कि वीटो की समीक्षा करने की पहल पर 2 वर्ष पहले काम करना शुरू किया गया था, जिसमें कुछ अन्य देश भी शामिल हैं। इसके पीछे ये बढ़ती चिंताएं थीं कि सुरक्षा परिषद लगातार अपना काम करने में कठिनाई महसूस कर रही है, जैसा कि उसे यूएन चार्टर में जिम्मेदारी सौंपी गई है और उसमें वीटो के बढ़ते प्रयोग को ही सबसे आम कारण बताया गया है।
संयुक्त राष्ट्र की एक नई रिपोर्ट में चेतावनी जारी की गई है कि मानव गतिविधियों और बर्ताव की वजह से दुनिया भर में आपदाओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। इससे लाखों करोड़ों जिंदगियों के लिए खतरा उत्पन्न हो रहा है। हिंसक संघर्ष, वैश्विक महामारियों और जलवायु संकट समेत अन्य आपदाओं से हाल के दशकों में दर्ज की गई आर्थिक और सामाजिक प्रगति पर भी जोखिम मंडरा रहा है। और विवरण के साथ अंशु शर्मा।
रिपोर्ट दर्शाती है कि पिछले दो दशकों में हर वर्ष 350 से 500 मध्यम से विशाल स्तर तक की आपदाएं हर साल हुई हैं। एक अनुमान के अनुसार वर्ष 2030 तक इन आपदाओं की संख्या प्रतिवर्ष बढ़कर 560 तक पहुंच जाने की आशंका है, यानी हर दिन औसतन 1.5 आपदाएं। आपदाओं का विकासशील देशों पर विषमतापूर्ण असर होता है, जिन्हें प्रतिवर्ष अपने सकल घरेलू उत्पाद में औसतन 1% का नुकसान उठाना पड़ता है, जबकि विकसित देशों के लिए यह आंकड़ा 0.3% से भी कम है। एशिया प्रशांत क्षेत्र को प्राकृतिक आपदाओं की सबसे अधिक कीमत चुकानी पड़ती है, जहां इन घटनाओं के कारण हर वर्ष औसतन 1.6% GDP का नुकसान होता है। विकासशील देशों में भी निर्धनतम आबादी को इन आपदाओं की सबसे ज्यादा पीड़ा झेलनी पड़ती है। जलवायु परिवर्तन के लिए यूएन के वार्षिक सम्मेलन यानी COP26 के दौरान जलवायु अनुकूलन प्रयासों में तेजी लाए जाने की पुकार लगाई गई थी और GAR 2022 रिपोर्ट में उसी पर ध्यान केंद्रित किया गया था। रिपोर्ट में दर्शाया गया है कि नीति निर्धारक किस तरह जलवायु बदलावों से न प्रभावित होने वाले विकास व निवेशों को आकार दे सकते हैं।
विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस सप्ताह 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस पर ध्यान दिलाया कि COVID-19 महामारी के बावजूद पिछले साल मलेरिया की रोकथाम और नियंत्रण की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की गई। स्वास्थ्य संगठन ने पिछले साल मलेरिया के विरुद्ध पहली वैक्सीन के इस्तेमाल की सिफारिश की थी। इसके जरिए 6 महीने से 5 वर्ष तक की उम्र के बच्चों में मलेरिया की रोकथाम की जाती है। पिछले साल दर्ज किए गए 22 करोड़ से ज्यादा मलेरिया के मामलों में 95% से अधिक यूएन एजेंसी के अफ्रीकी क्षेत्र में सामने आए और 6 लाख से अधिक लोगों की मौत हुई। यूएन एजेंसी ने कहा कि COVID-19 के कारण स्वास्थ्य सेवाओं में व्यवधान दर्ज किया गया था और मलेरिया के विरुद्ध प्रगति की रफ्तार धीमी हुई है, लेकिन फिर भी 20 साल पहले की तुलना में दुनिया मलेरिया के खिलाफ लड़ाई में बहुत आगे है। रोकथाम प्रयासों के तहत बच्चों को विश्व की पहली मलेरिया वैक्सीन दी जा रही है और अन्य उपाय अपनाए जा रहे हैं। यूएन एजेंसी ने सचेत किया है कि वैक्सीन की उपलब्ध खुराकों का इस्तेमाल अधिकतम प्रभाव के लिए किया जाना चाहिए और इसलिए सर्वाधिक जोखिम झेल रही आबादी के लिए इन्हें सुलभ बनाया जाना होगा। संयुक्त राष्ट्र ने लैंगिक समानता और अवसरों के लिए वैश्विक प्रयासों में बुधवार को एक रिपोर्ट प्रकाशित की, जो बताती है कि गणित के मामले में लड़कियां भी अब कक्षाओं में लड़कों की ही तरह अच्छा प्रदर्शन कर रही है, मगर फिर भी अभी बहुत से ऐसे कारण मौजूद हैं जो लड़कियों के रास्ते में बाधाएं खड़ी कर रहे हैं। और ब्यौरे के साथ अंशु शर्मा।
संयुक्त राष्ट्र के शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को ने ये सकारात्मक समाचार 120 देशों के प्राइमरी और सेकेंडरी शिक्षा क्षेत्र में कराए गए एक विश्लेषण के आधार पर प्रकाशित किया है। शोधकर्ताओं ने पाया है कि वैसे तो शुरुआती वर्षों में गणित में लड़कियों की तुलना में लड़के ज्यादा बेहतर प्रदर्शन करते हैं, मगर ये लैंगिक खाई सेकेंडरी शिक्षा के स्तर तक आकर खत्म हो जाती है। कुछ देशों में लड़कियां गणित में लड़कों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन करती हैं। मसलन मलेशिया में 14 वर्ष की उम्र में लड़कियां गणित में लड़कों से 7% की बढ़त हासिल कर रही हैं। कंबोडिया में 3% और फिलीपींस में 1.4%। यूनेस्को का कहना है कि इस प्रगति के बावजूद लैंगिक पूर्वाग्रह और दकियानूसी सोच लड़कियों की शिक्षा को प्रभावित करती रहेगी, क्योंकि तमाम देशों के गणित के उच्च स्तर पर लड़कों का ही प्रतिनिधित्व ज्यादा रहने की संभावना है। लड़कियां वैसे तो गणित और विज्ञान में अच्छा प्रदर्शन करती ही हैं, वो पाठन में भी ज्यादा कुशलता दिखाती हैं और पाठन में न्यूनतम निपुणता हासिल करने में लड़कों की तुलना में ज्यादा लड़कियां ही बढ़त लेती हैं। यूनेस्को का कहना है कि प्राइमरी शिक्षा में सबसे ज्यादा अंतर सऊदी अरब में है, जहां ग्रेड 4 में पाठन में न्यूनतम निपुणता हासिल करने वाली लड़कियों की संख्या 77% है, जबकि लड़कों की संख्या 51%।
तो आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। सचिन गौड़ को अनुमति दीजिए। नमस्कार।